हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 31 एंड 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग के श्री चरणों की वंदना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद छठा अध्याय, इसका शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद। श्लोक नंबर 31। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि बता रहे हैं, अन्तर्बहिश्च लोकास्त्री पर्येम्यस्कन्दिता गतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविकात गतिः क्वचित्। अन्तर्बहिश्च लोकास्त्री पर्येम्यस्कन्दिता व्रता अनुग्रहान् महाविष्णो अविगात गति क्वचित्। अन्तर्बहिश्च लोकास्ति पर्येम्यस्कन्दिता व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गति क्वचित्।
अन्तर्बहिश्चलोकांस्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविगात गतिः क्वचित् अन्तर्बहिश्चलोकांस्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गति क्वचित्। शब्दों का अर्थ, अंतः दिव्य जगत में, बहि भौतिक जगत में, च तथा, लोकान लोकों में, त्रीन तीन, विभाग, प्रियमी विचरण करता हूँ, अस्कंदितः अविच्छन्, व्रतः व्रत या प्राण, अनुग्रहात अहितु की कृपा से महाविष्णु महाविष्णु या कारण दक्षाय विष्णु की, अविघात बिना रोक टोक के, गति प्रवेश क्वचित किसी समय। अनुवाद, तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों विभागों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में स्थिर रहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक गोले यानी ब्रह्मांड के तीन विभाग हैं, ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोक अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर जिनमें आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतो प्रकाशित वैकुंठ लोक रहते हैं। नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य गोल आर्धों में बिना रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि में किसी भी भाग में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के तीन गुणों सत्तो रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन नारद मुनि इन समस्त गुणों से परे हैं। अतएव वे कहीं भी अनियंत्रित भाव से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान विष्णु की अहितु की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल भक्तों द्वारा भगवान के अनुग्रहवश ही अनुभव की जाती है। अतएव भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत अवश्य होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक तथा सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन यानी ज्ञान के प्रमाण हैं, किंतु नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल प्रमाण हैं। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी संकोच के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। श्लोक नंबर 32। देवदत्ताम् इमां वीणाम् स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्च्छयित्वं हरिकथां गायमानश्च राम्यहम् देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्च्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च राम्यहम् देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्च्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च रात्महम् देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्च्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च राम्यहम् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्च्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च राम्यहम् शब्दों का अर्थ देव अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा दत्तां प्रदत्त इमाम इस वीणां वीणा को स्वर स्वर या बोल ब्रह्म दिव्य विभूषितां अलंकृत मूर्छयित्वा स्पंदन करती हरिकथा दिव्य संदेश को गायमान निरंतर गाते हुए चिरामी विचरण करता हूँ अहम में अनुवाद। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया था झनकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र यानी वीणा का वर्णन है और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भी की गई है। यह दिव्य यंत्र भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस यंत्र द्वारा झनकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद के इस यंत्र द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर चारे कामा पाध नी सा च अर्थात षडज री मतलब ऋषभ गा गंधार म मध्यम प पंचम ध धैवत तथा नी निषाद भी दिव्य हैं और विशेषता दिव्य गीतों के लिए हैं। भगवान की शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण होते रहते हैं क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्रील नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात सा रे गा मा पा आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अत्यंत ही सुंदर रीति से नारद मुनि अपने पूर्व जन्म से पुनः इस जन्म में परिवर्तित होने की कथा को वेद व्यास जी को सुना रहे हैं। जैसे कि कल हमने सुना श्लोक नंबर 13 में नारद मुनि ने बताया, सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं सुसृक्षत मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणी व्योहम चिक्यरे, के 4,32,00,00,000 वर्ष बीत गए उसके बाद जब भगवान की इच्छा हुई पुनः सहस्र युग पर्यंत उत्थायेदं सुसृक्षत इस सृष्टि को रचना करने की भगवान की इच्छा हुई तो फिर अन्य ऋषियों जैसे मरीचि और अन्य ऋषियों के साथ अंगिरा अत्रि उनके साथ भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी उत्पन्न हुआ। और उसके बाद उत्पन्न होने के बाद उनके शरीर की जो चेंजिंग्स थी उनके विषय में कि साधारण व्यक्ति के अंदर और जो दिव्य भगवान के दिव्य शरीर से जो उत्पन्न हुए थे उनके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स होती है वो आज बता रहे हैं कि मेरे अंदर क्या डिफरेंस आ गया था। वो बता रहे हैं, अंतर बहिष्य लोकास्त्रीन परियेम्यस्कंदित व्रता। अंतर बहिष्य यानी कि बाहर के लोकों में और अंतर के लोकों में, मतलब भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में और लोकास्त्रीन और तीन लोकों में। अब तीन लोक कौन से होते हैं? 14 लोक होते हैं ना, पृथ्वी सेंटर में होती है, ऊपर 6 लोक होते हैं, नीचे 7 लोक होते हैं। तो सॉरी, नीचे 6 लोक होते हैं, पृथ्वी 7वां है, ऊपर 7 लोक होते हैं, तो 14 लोक हैं। फिर यहाँ पर 3 लोक लिखे हुए हैं। 3 लोक का मतलब ये होता है कि नीचे के लोक, सेंटर की पृथ्वी, ऊपर के लोक। ऊपर के सारे लोकों को एक ही लोक माना जाता है और एक पृथ्वी लोक को माना जाता है, और नीचे के जो अतल वितल तलातल रसातल पाताल ये जो सारे लोक हैं उनको एक माना जाता है। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, अंतर बहिष्य लोकास्त्रीन के अंदर के मतलब दिव्य लोकों में और भौतिक लोकों में और 3 जो आध्यात्मिक लोक हैं उसके अतिरिक्त जो बाकी सारे आध्यात्मिक लोक हैं ना, जैसे सत्य लोक के ऊपर जो आध्यात्मिक लोक हैं वो सब असीन है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि ब्रह्म लोक से ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके ऊपर चिन्मय आकाश होता है। जैसे सत्य लोक होता है ब्रह्मा जी का ऊपर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऊपर से, ये जैसे ये पृथ्वी है, उसके बाद भूलोक, भूविलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, सिद्धलोक और सत्यलोक, स्वर्गलोक के बाद सत्यलोक है ब्रह्मा जी का लोक, और उसके ऊपर है ना बहुत सारे अन्य लोक हैं जो कि चिन्मय आकाश में होते हैं। यानी वो साधारण ये भौतिक ब्रह्मांड के लोक नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं, चिन्मय आकाश के लोक होते हैं और उनका विस्तार असीम है, जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों से भगवान द्वारा निवसित असंख्य ऐसे लोग रहते हैं जो कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के योग्य होते हैं, जिनको भौतिक शरीर। अब ये भौतिक शरीर क्या होता है, जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है ना, ये सिर्फ इसी पृथ्वी पर रहने के योग्य है। अभी जिस लोक में आप जाओगे ना उस लोक के अनुसार आपको शरीर मिलता है। जैसे गंधर्व लोक का अगर हम लोग ऊपर, इससे ऊपर ना जितने प्लैनेट्स हैं ना उसके अंदर जाने का हम हमारे अंदर वो नहीं है, पावर नहीं है। हर एक प्लैनेट का एक अंदर, जैसे हमारे पंचभूत है ना ये शरीर, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है ना, पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। और किसी, अब ये होते पंचभूत से ही होते हैं, किसी के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होता है, किसी के अंदर जल तत्व ज्यादा होता है। जैसे मछली के अंदर जल तत्व ज्यादा है तो वो जल के अंदर रह सकता है, पृथ्वी के अंदर नहीं रह सकता। तो उसी तरह हर प्लैनेट के लिए भी अलग अलग पंचभूत की है ना मात्रा से शरीर बनता है, उस शरीर से निर्माण करके। और वो मिलता कैसे है, आपको किस तरह से दूसरे लोक में जाना है, वो भगवान श्री कृष्ण बताते 14.18 में। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थो मध्ये तिष्ठस्ति राजसां जगन्य गुणवृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसां। यदि आप सत्वगुण को विकसित करोगे तो ऊपर के लोकों में भेज दिए जाओगे, रजोगुण को अगर विकसित करोगे तो सेंटर में रहोगे, और तमोगुण को विकसित करोगे तो नीचे जो नरक लोक है उधर चले जाओगे। लेकिन ये जो गुण है ना वो केवल और केवल उन जीवों पर प्रभावित होते हैं जो भौतिक जगत के जीव होते हैं। तो भौतिक जगत के जीव इन गुणों से प्रभावित होते हैं, तो जैसे ही जो गुण विकसित करते हैं उसके अनुसार उसे दूसरे लोक में मृत्यु के बाद भेज दिया जाता है। लेकिन नारद मुनि इन समस्त गुणों से परे हैं, है ना। नारद मुनि को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था। अब क्योंकि उन्होंने बोला ना मैं पंच भौतिक शरीर को मैंने त्याग दिया था और भगवान के कृपा से मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था। वो दिव्य शरीर के अंदर ऐसा पावर था कि वो किसी भी लोक में बगैर किसी वीजा, बगैर किसी पासपोर्ट के, बगैर किसी वाहन के अपने शरीर द्वारा जा सकते थे। उनका दिव्य शरीर ऐसा था। वास्तव में भक्तों ये भगवान की अहितुकी कृपा ही तो है कि नारद मुनि जो कि अब पिछले जीवन का उनको देखा जाए तो उनके पास कुछ नहीं था, और आज भगवान की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसी अहितुकी कृपा केवल भगवान या उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी च्युत नहीं होते हैं उनसे, क्योंकि वो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। उनका हृदय केवल एक ही इच्छा होती है हृदय की कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, तो उनके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो भी अलौकिक शब्द होते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी होते हैं, अब देखो तीन कोटियां हैं, एक कर्मी होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं और एक भक्त होते हैं। कर्म योग में अगर कृष्ण निकाल दिया जाए तो खाली कर्म रह गया, है ना, योग नहीं बचा। ज्ञान योग में से अगर कृष्ण निकाल दिया जाए तो खाली ज्ञान बचा, कृष्ण प्रेम। क्योंकि कर्म के साथ भी हमें कृष्ण प्रेम यदि हम इंक्लूड करेंगे तो फिर वो भक्ति बन जाएगा। ज्ञान के साथ भी यदि हम कृष्ण प्रेम को इंक्लूड करेंगे तो वो भक्ति बन जाएगा, फिर ज्ञान योग बन जाएगा, जिसके द्वारा हम कृष्ण के साथ अपने वियोग को वापस से जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि उसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है, कृष्ण प्रेम इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत अवश्य होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग से भाव होता है कि मुझे कार्य करना है। भगवान का अगर सानिध्य निकाल देते हैं, भगवान की प्रसन्नता यानी भक्ति निकाल दी गई, तो वो कर्म जो है खाली आपको कभी ना कभी गिरा देगा, और भक्ति निकाल दी जाए तो वो ज्ञान जो है वो आपको अहंकार आपके अंदर आ जाएगा। और जैसा कि कहा जा चुका है कि ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। हर किसी मतलब वैकुंठ जगत जो है आध्यात्मिक जगत है जो भगवान का लोक है, वहां पर केवल शुद्ध भक्त ही जा सकते हैं। साधारण दूसरे ऋषिगण जो कि भक्त नहीं होते हैं बल्कि लेकिन फिर भी योगा अभ्यास करते हैं बहुत ज्यादा और है ना ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहाँ पर तो ये तक लिखा हुआ है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनत तथा सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन के प्रमाण है। ये सब ज्ञान और कर्म के ऋषि हैं, लेकिन नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल प्रमाण हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको कोई भी ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि आप इस लोक में जा सकते हो उस लोक में। नारद मुनि तो सदैव वहीं पर रहते हैं जहाँ पर कृष्ण उपासना नादसा, इनकी एक ही लालसा है, भक्ति की एक लालसा होती है हृदय के अंदर कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के साथ बिताऊं। हालांकि उन्हें श्राप भी प्राप्त हुआ था दक्ष प्रजापति से, आगे हम पढ़ेंगे, तो भी वो सदैव द्वारिका में, जब भगवान होते थे द्वारिका में तो द्वारिका में चले जाते, जब भगवान मथुरा में जाते थे तो मथुरा में चले जाते, जब भगवान वृंदावन में, बस वो ये सोचते हैं कि मैं भगवान से दूर कैसे रहूं। अगर जाते भी थे तो मतलब थोड़ी देर के लिए किधर जाते थे, भगवान उनको सेवा के लिए भेज देते थे। जब
रानियों के साथ होते थे, अपनी रानी के साथ, कोई भी रुक्मणी के साथ होते थे, तो उनको बोलते थे कि नारद मुनि आप मेरा एक काम करके आओ, मथुरा की जाके खबर लेकर आओ, या कहीं पर दूसरी जगह पे भेज देते थे। और नारद मुनि अभी तक भगवान अभी तक खाना खत्म नहीं करते थे, प्रसाद खाते थे, उसी टाइम पर आ जाते थे फौरन के हाँ हाँ वहां पर सब ठीक है प्रभु। फिर वापस नारद मुनि को भगवान बोलते थे थोड़ी देर के लिए आप किधर दूसरी जगह पर भेज देते थे, फिर भी नारद मुनि, क्योंकि भक्त की जो हृदय की लालसा होती है ना, फिर वो भगवान की प्राइवेसी को नहीं याद करते कि भगवान को भी प्राइवेसी की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान भी कभी अपने भक्तों से तंग नहीं आते, वो सदैव प्रेम करते हैं भगवान से। भगवान अपने भक्त, जितना परसेंट हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, उससे अधिक भगवान हमसे, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम। यदि हम 10% भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान 10% प्रेम नहीं करते, भगवान 13% करते, थोड़ा आगे निकल जाते हैं, परंतु 100% नहीं करते जब तक कि हमारे हमारे प्रेम का प्रयास 98% नहीं हो जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम, थोड़ा थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक साथ जितना हमें चाहिए उतना हमें देना भी पड़ेगा। तो नारद मुनि कहते हैं, और नारद मुनि कहते हैं अंतर बहिष्य लोका स्त्रीन के भौतिक लोकों में और आध्यात्मिक लोकों में और तीनों लोकों में, ऊपर के, नीचे के और सेंटर के लोकों में, पर स्कंदिता प्रथा कि मुझे कोई रोक टोक के बगैर बगैर अविच्छन भाव से, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी और मैं जा सकता हूँ हर जगह पर। और वो कैसे हुआ, वो कहते हैं अनुग्रहान महावेश्णु, ये अहितु की कृपा है मेरी भगवान की मुझ पर। क्यों हुई है ये कृपा, क्योंकि मैंने शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त किया, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, उनके आदेशों के अनुसार अपना जीवन बिताया, तो भगवान की अहितु की कृपा मुझ पर मुझे प्राप्त हुई, जिसके कारण अविघात गति क्वचित, हर जगह पर स्वच्छंद बगैर किसी रोक टोक के पहुंच सकता था, जाना मेरे लिए संभव हो गया। और मैं जाके क्या करता था वहां पर, और मुझे क्या मिला था, जिस में जब सभी जगहों पे जाता था तो मैं क्या करता था, आगे बताते नारद मुनि। देवदत्तम इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम, देवदत्तम इमां वीणा, और मुझे ना केवल यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था, परंतु भगवान की अहितु की कृपा अनुग्रह से मुझे यह वीणा भी प्रदान की थी भगवान ने, जो वीणा बजाते ना नारद मुनि, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का भजन करते हुए उस वीणा का स्वर घोषित करते हैं। और वो स्वर कैसा है, स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये कोई साधारण वीणा नहीं थी, उसका जो स्वर था वो दिव्य स्वर से अलंकृत वीणा थी, यानी कि उसका जो साउंड वाइब्रेशन जो निकलता था वो ट्रांसेंडेंटल ट्यून, एकदम शुद्ध पवित्र दिव्य ध्वनि उसमें से निकल रही थी। और मूर्छयित्वा हरिकथां, मैं उसको भजाता था और सदैव भगवान के पवित्र कथा का वर्णन करता था, यानी और क्या करता था, साथ में गायमान, गायमान का मतलब होता है गान करता था, वो वीणा को बजाकर निरंतर गायमाना का मतलब होता है कंटिन्यूअस, एक सेकंड के भी रुकता नहीं था, सदैव बजाता हूँ मैं उस, अभी भी था नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर कि वो सदैव ऐसा करते हैं, अब क्योंकि वो प्रेजेंट में आ गए ना, पहले पास्ट का बता रहे थे। तो गान करते हुए क्या करता था, चराम या हम, चराम का मतलब होता है विचरण करता हुआ, मैं सदैव उसको वीणा को बजाते हुए सदैव विचरण करता रहता था, क्योंकि उस वीणा की ध्वनि जो थी वो एक वीणा की जो ध्वनि है वो ट्रांसेंडेंटल है, साउंड वाइब्रेशन जो उसमें से निकल रहा था वो दिव्य ध्वनि उसमें से निकल रही थी। और वास्तव में भक्तों, भगवान के द्वारा जो कुछ भी प्रदान किया जाता है वो आध्यात्मिक ही होता है, तो उसमें से जो स्वर निकल रहा था वो भी आध्यात्मिक, तो उसका जो प्रयोग होना चाहिए, भगवान के द्वारा हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग किस लिए होना चाहिए? केवल भगवान की प्रशंसा के लिए होना चाहिए। केवल उद्देश्य, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो भले भौतिक है, अभी हमारे पास जो कुछ भौतिक शरीर है, भौतिक वाणी है, लेकिन वो भले ही भौतिक है परंतु यदि हम उसको दिव्य, भगवान की दिव्य सेवा के लिए यूज करेंगे तो वह भौतिक वस्तु भी आध्यात्मिक हो जाएगी। जैसे लोहे की एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी देते हैं कि लोहा जब अग्नि में रखा जाता है तो वो होता लोहा है, लेकिन अगर आप उसको अग्नि बोलोगे तो भी अग्नि भी बोल सकते हो, क्योंकि वो लोहा तप कर लाल हो गया अग्नि की तरह। उसी तरह हमारे भी भौतिक ये जितने भी अंग हैं, जितने भी हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं, वो भी यदि हम भगवान की दिव्य सेवा में यूज करेंगे तो वो भी दिव्य बन जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान ने मुझे एक दिव्य वीणा प्रदान की थी जिसमें से दिव्य स्वर निकलता है, और इस स्वर को बजाते हुए मैं निरंतर हरि कथा करता रहता और विचरण करता रहता। एक बारी क्या हुआ, नारद मुनि को ऐसा लगा कि मैं अब इस वीणा को बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया हूँ, इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मुझसे अच्छी कोई वीणा बजा नहीं सकता। तो जाके भगवान को बोला कि भगवान आपको पता है आपने जो मुझे वीणा दी है ना उसको मैं इतना अच्छा बजाता हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ, मुझसे अच्छी तो कोई नहीं बजाता। तो सामने तुमरु गंधर्व, वास्तव में गंधर्वों का काम होता है ये बजाना, गाना बजाना। गंधर्व जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग में और गान सारे स्वर्ग के देवता मिलकर भगवान की प्रसन्नता के लिए गायन करते हैं और गंधर्व बजाते हैं। तो तुमरु गंधर्व है वो वीणा मास्टर है, मतलब वीणा स्पेशलिस्ट जैसे होते ना कि भाई सबसे अच्छा वो बजाने वाला। लेकिन नारद मुनि ने कहा मैं तो तुमरु से भी ज्यादा अच्छा बजा लेता हूँ, भगवान आपको पता है मुझसे अच्छा वो भी नहीं बजा सकता। तो भगवान ने जब नारद मुनि के मुख से ये सुना तो भगवान को लगा कि अभी इस नारद को घमंड हो गया है, अब इसका घमंड चूर करना पड़ेगा। तो नारद मुनि को भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात से ईर्ष्या की गंध आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे ईर्ष्या कर रहे हो, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में उस व्यक्ति को कभी भी प्रवेश नहीं दिया जाता है जिसको ईर्ष्या हो जाती किसी से। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता 9.1 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ, प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, क्योंकि तुम अनसूयवर हो, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। वास्तव में भक्तो हमारे जितने भी दूसरे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन सबको हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। जैसे काम है वो हम भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्रोध उन व्यक्तियों पर जो कि भगवान के साथ शत्रुता करते हैं उनके ऊपर, जैसे हनुमान जी ने और अर्जुन ने अपने क्रोध को भगवान के जो अधर्मी लोग हैं उनको समाप्त करने के लिए अपना क्रोध विख्यात किया, भगवान की सेवा में लगाया। और लोभ भी कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करें, और सारी जितने भी हमारे अवगुण हैं मद मात्सर्य, लेकिन ये मात्सर्य जो है, हाँ, जो ईर्ष्या है, जो अनसूय है, वो हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। तो भगवान की सेवा में लगने से पहले हमारे हृदय से ये ईर्ष्या समाप्त करनी होगी, ये एनवियस भाव जो है उसको खत्म करना होगा। जब तक हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या है तब तक हम भगवान के सानिध्य को, भगवान के लोक को प्राप्त, ईर्ष्या ही तो निंदा करवाती है ना, तो इसी के कारण निंदा भी होती है। तो ईर्ष्या को अपने हृदय से समाप्त करना होगा। तो यदि किसी के लिए भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे हृदय के अंदर इसके लिए ईर्ष्या है, द्वेष भाव है, तो कैसे भी करके उसको समाप्त करना है यदि हम भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं। उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी ईर्ष्या करने से हमारा जन्म बिगड़ जाएगा। तो नारद मुनि को कहा कि देखो तुम उससे ईर्ष्या करते हो। नारद मुनि को उसी समय जागृति हो गई और बोला, कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, अब आप बताओ मैं क्या करूं, मैं अपनी इस गलती को सुधारने की कैसे सुधारूं। तो भगवान ने कहा, तुम ऐसा करो, तुमरु गंधर्व से जाकर वीणा बजाना सीखो, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट है, तुम उससे बजाना सीखो, जब वो तुम्हें बजाना सिखाएगा फिर तुम बात करना। तो फिर नारद मुनि ने कहा हाँ ठीक है। तो नारद मुनि ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि प्रभु आप मुझे वीणा बजाना सिखाओ। नारद मुनि को तुमरु ने कहा तुम मुझसे सीखने आयो? तो बोला हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसा अच्छा बजाऊं। तो नारद मुनि को उन्होंने सिखाया। फिर भगवान ने तुमरु को कहा तुम नारद मुनि को सिखा रहे हो? बोला हाँ, अब तो वो सीख गया। तो फिर बोला चलो फिर कंपटीशन करते हैं। तो भगवान ने कंपटीशन रखा कि दोनों में से अच्छा कौन बजाता है। जब बजाने आए तो क्योंकि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो भगवान के प्रेम में बजा रहे थे, और बजाते बजाते तो फिर भगवान ने ये घोषित कर दिया कि नारद मुनि बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तब उस समय नारद मुनि ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो जो कुछ सीखा है तुमरु से ही सीखा है, यही मेरे मुझे इन्होंने ही शिक्षा दी है, आप उन्हीं को अवार्ड दीजिए, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। वास्तव में भक्तों, भक्त को किसी अवार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ये कि मैं अपनी साधना से, अपने प्रयासों से कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, वही भक्त का एकमात्र लक्ष्य होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आज श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि स्वरों के विषय में, सारे कामा पादानी सा नीधा पामा गारे साधा, इनके विषय में बता रहे हैं कि ये जो दिव्य स्वर हैं, ये वास्तव में जितने भी स्वर हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हैं। तो ये भौतिक जगत में तो लोग हैं ना, सब अलग अलग लोगों को प्रसन्न करने के लिए इन स्वरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सारे स्वर जो हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। इसी तरह से जैसे हमारे जितने भी वेद हैं उनकी अलग अलग ध्वनि है, जैसे साम वेद है उसके अंदर वो फुल म्यूजिकल वे में बताया गया है, उसमें हर समय का राग बताया जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उस समय समय किस तरह का राग है ना गाना चाहिए, और दोपहर के वक्त जो संध्या के टाइम पर किस तरह सा राग गाना चाहिए, हर समय का राग जो है बहुत ही सुंदर तरीके से गाया जाता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनके भी अंदर जो भी श्लोकास हैं, जो भी मंत्रास हैं, वो भी राग के अनुसार है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता ये गीत है ना, गीत मतलब सॉन्ग है, तो सॉन्ग वो अनुष्टुप छंद, हम जो छंद पढ़ रहे हैं ना, अलग अलग छंद में उन श्लोकों को पढ़ा जा सकता है। हम जो छंद पढ़ते हैं जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, तो ये अनुष्टुप छंद है। और जो ये हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, उसको कहते हैं सारधु विक्रात, ये एक अलग से छंद है, अलग से मतलब साउंड है, उसका अलग अलग नाम होता है। इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जो स्टार्ट में पढ़ते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवेस्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवायत मे नमः। इसमें बताते हैं, ये 11 कैंटो में आएगा, अभी हम पढ़ेंगे जब आगे भागवतम। तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः रुद्र मरुतः, यानी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुत गण जिन भगवान की स्तुवंती दिव्य स्तवे, दिव्य स्तुत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, कैसे करते हैं,
वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायंती यम सामगा, यानी सामवेद के गाने वाले जो अंग हैं अलग अलग ट्यून्स में पद क्रमों के द्वारा अलग अलग समय में जिस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं, और सांग पद क्रमोपनिषदे और अलग अलग जितने भी उपनिषद हैं उनमें अलग अलग छंद के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। गायंती यम सामगा और गा के साउंड में सब भगवान की भगवान का ध्यानावस्थित तद गते न मनसा, और योगी जन जिन भगवान का ध्यान लगाते हैं अपने हृदय में वो भी जब मंत्र उच्चारण करते हैं म्यूजिक में, मतलब उनका भी एक साउंड वाइब्रेशन होता है जो दिव्य होता है। और ध्यानावस्थित तद गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, और भगवान का दर्शन हो जाता है उस स्वर से, स्वर जब जाता है भगवान के पास हृदय से निकला हुआ कोई स्वर, तो भगवान तो पश्यन्ति यम योगिनो, योगियों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यस्यांतम विदो न सुर असुरगणा, सुर हो या असुर हो उन भगवान के अंत को कोई नहीं जान सकता। देवाय तस्मै नमः, ऐसे भगवान को मैं अपना नमस्कार प्रदान करता। तो जैसे जैसे साउंड्स होते हैं अलग अलग साउंड्स जो हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम देखते हैं, और खासतौर पर हम जो गौड़िया वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण करते हैं उनके भक्तों के पदचिन्हों के अनुसार हम चल रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कीर्तन ही है सदाहरी। कीर्तन में क्या है, हमें अवश्य साउंड की आवश्यकता पड़ती है, तो कीर्तन में अलग अलग बाजे मृदंग और बजाए जाते हैं जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ताथया ताथया बाजे लो खोला, घन घन ताहे जांजेरा रोला, प्रेमा ढला ढला सोनारा अंग, चरण बुनो पर बाजे। ताथया ताथया बाजीरा खोला, अर्थात जो खोल है मृदंग है मधुर आवाज में उसकी ताल से ताल मिलाकर झांझर घना घना ताहे झांझर रोला, जो झांझर है वो जो हम किरताल बजा रहे हैं वो घन घन होकर वो बज रही होती है, और इस तरह से महाप्रभु का जो सोने जैसा अंग है प्रेम ढला ढला सोनारा अंग, चरण नूपुर बाज, तो चरणों में नूपुर बाज के चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नृत्य करते हैं। कृष्णा कीर्तन गानना नर्तना परौ प्रेमामृत बोधिनी, धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। जैसे हम आरती में भी गाते हैं शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि जितने सप्त स्वर हैं अर्थात सारे काम इन आदि का व्यवहार जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए। हमें भी भक्तों को सीखना चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि जितना अच्छा संकीर्तन में म्यूजिक बजेगा भाव से बजेगा तो लोग आकर्षित होंगे, और अच्छे तरीके से भाव से भगवान को प्रसन्न करने का ये एक उपाय है। भक्त सदैव उपाय खोजता है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने जैसी कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, तो भगवान भगवत गीता में ऐसा कहते हैं मत चित्ता मत गतः प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि भक्तों को आनंद आता है जब वो मेरे विषय में बात करते हैं, मेरे विषय में
गाते हैं, बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और इस तरह से आनंद उनको प्राप्त होता है, इसी तरह से उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो भक्तों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं कंटिन्यूस करता था, कभी भी समय में सारा समय निरंतर भगवान के पवित्र नाम का गायन करता था, इस वीणा की ध्वनि पर करता हूँ बल्कि। तो है ना, बहुत भगवान को प्रसन्न करते हैं इस तरह से समस्त भक्तों को। श्री गोपाल जी का आदेश है कि सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, ताकि हमें भी दिव्य जगत में प्रवेश प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छा कर सकूँ। हरे कृष्णा।